लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 29 मार्च को वैटिकन के प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से लाइव प्रसारण के माध्यम से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima è quello della resurrezione di Lazzaro. Lazzaro era fratello di Marta e Maria. Erano molto amici di Gesù.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। चालीसा काल के पांचवें रविवार के सुसमाचार पाठ में लाजरुस को जीवन दान दिए जाने की घटना का जिक्र है। लाजरुस मार्था और मरियम का भाई था। वे यीशु के अच्छे मित्र थे। जब यीशु बेथानिया पहुंचे, तब लाजरुस चार दिनों पहले मर चुका था। मार्था उनसे मिलने दौड़ी और उनसे कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई जी उठेगा। फिर कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यहाँ यीशु दिखलाते हैं कि वे ही जीवन के मालिक हैं, जो मरे हुए लोगों को भी जीवन देते हैं। उसके बाद मरियम और दूसरे लोग भी आंसू बहाते हुए आए। सुसमाचार बतलाता है कि लोगों को रोते हुए देख यीशु व्याकुल हो उठे और रो पड़े। इसी व्याकुलता के साथ उन्होंने पिता की याद की और आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। और लाजरुस बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। संत पापा ने कहा,
कोई तो क्या मो कौन मानो के दियो ए वीता ए दोना वीता।
यहाँ हम अपने हाथ से छू सकते हैं कि ईश्वर जीवन है और जीवन प्रदान करते हैं। वे मृत्यु के नाटक को समाप्त कर सकते हैं। यीशु अपने मित्र लाजरुस की मृत्यु को रोक सकते थे, किंतु वे प्रियजनों की मृत्यु के दुख में हमारे साथ सहभागी होना चाहते थे। और सबसे बढ़कर वे मृत्यु पर ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते थे। इस सुसमाचार पाठ में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का विश्वास एवं ईश्वर का प्रेममय सामर्थ्य एक दूसरे को तब तक खोजते हैं जब तक कि वे मिल नहीं जाते। यह एक दोहरा रास्ता है जिसको हम मार्था एवं मरियम तथा उनके साथ हम सभी की गुहार में देख सकते हैं। यदि आप यहाँ होते, ईश्वर का जवाब कोई भाषण नहीं है, किंतु मृत्यु की समस्या पर ईश्वर का जवाब यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, विश्वास रखो। आंसू बहाते हुए भी विश्वास बनाए रखो, उस समय भी जब लगे कि अब मृत्यु की जीत हो चुकी है। संत पापा ने कहा, अपने हृदय से पत्थर हटा लें, ईश्वर के वचन को प्रवेश करने दें, ताकि जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन आ सके। आज भी यीशु हमसे कहते हैं, पत्थर हटा दो। ईश्वर ने हमें कब्र के लिए नहीं बनाया, उन्होंने हमें जीवन के लिए बनाया है। जो सुंदर, अच्छा और आनंदमय है, किंतु मृत्यु का प्रवेश शैतान की ईर्ष्या के कारण हुआ है और यीशु ख्रिस्त हमें इस जाल से बचाने आए। अतः हमें हर प्रकार के पत्थर को हटाना है, उदाहरण के लिए पाखंड के साथ विश्वास को जीना, दूसरों की निंदा करना, अपमान, बदनामी और गरीबों का तिरस्कार करना, ये सभी मौत लाते हैं। ईश्वर हमें इन पत्थरों को अपने हृदय से हटाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन फलता फूलता रहे।
क्रिस्तो वीवे e chi lo accoglie e aderisce a lui entra in contatto con la vita. Senza Cristo o al di fuori di Cristo non solo non è presente la vita, ma si ricade nella morte.
क्रिस्त जीवित हैं और जो कोई उनमें विश्वास करता है और उनका स्वागत करता है एवं उनके साथ संयुक्त रहता है वह जीवन में प्रवेश करता, जबकि जो लोग क्रिस्त के बिना अथवा क्रिस्त से दूर रहते हैं वे न केवल जीवन में प्रवेश नहीं करते बल्कि मृत्यु के गर्त में गिर जाते हैं। लाजरुस का जी उठना पुनरुत्थान का प्रतीक है जो विश्वासियों को बपतिस्मा में प्राप्त होता है। इसके द्वारा वे क्रिस्त के पास का रहस्य में प्रवेश करते हैं। पौत्र आत्मा के कार्य एवं शक्ति से क्रिस्त एक नई सृष्टि के रूप में जीते हैं, जो जीवन की सृष्टि बन जाते और जीवन की ओर बढ़ते हैं। धन्य कुंवारी मरियम हमें अपने पुत्र यीशु के समान दयालु बनने में सहायता दे, जिन्होंने उनके दुख को अपनाया। वे हम सभी के करीब रहें जो कठिनाई में हैं। हमारे लिए ईश्वर के प्रेम और उनकी कोमलता के प्रतिबिंब बने, जो हमें मृत्यु से मुक्त करते और जीवन पर विजय दिलाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी लोगों का अभिवादन किया। लोगों को संबोधित कर उन्होंने कहा, इन दिनों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने COVID-19, जो सीमाओं को नहीं जानता, उसके द्वारा उत्पन्न आपातकाल के कारण विश्व के सभी क्षेत्रों में तत्काल युद्ध विराम की एक अपील जारी की है। मैं पूरी तरह युद्ध विराम का आह्वान करता हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने इस अपील को स्वीकार किया है और सभी को निमंत्रण देता हूँ कि इस अपील का पालन करते हुए युद्ध विराम के सभी रूपों को रोका जाए, मानवीय सहायता को बढ़ावा दिया जाए, कूटनीति के प्रति खुले हों और जो लाचार स्थिति में हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तब संत पापा ने भाईचारा को बढ़ावा देते हुए कहा, महामारी को रोकने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता हर एक व्यक्ति को एक मानव परिवार के सदस्य के रूप में भाईचारा के एक सूत्र में बांध दे, विशेष रूप से यह राष्ट्रों एवं हितधारकों के बीच प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठने की प्रतिबद्धता को नवीकृत करे। टकराव का समाधान युद्ध से नहीं किया जा सकता, यह वार्ता एवं निर्माणात्मक शांति की खोज हेतु विरोध एवं विरोधाभासों को दूर करने से किया जा सकता है। तब संत पापा ने संकट में पड़े लोगों की याद की। उन्होंने कहा, इस समय मैं विशेष रूप से उन सभी लोगों की याद करता हूँ जो वृद्धा आश्रमों एवं कैदों में दलों में जीने के लिए मजबूर हैं। मैंने मानवाधिकार के एक आधिकारिक मेमो में पढ़ा जिसमें भीड़भाड़ वाले जेलों की समस्या के बारे में बात की गई है जो एक त्रासदी बन सकती है। उन्होंने कहा, मैं अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे गंभीर समस्याओं के प्रति सचेत रहें और भावी संकट को रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं। तब अंत में संत पापा ने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Io lo faccio per voi.
Bhagur jeevan tere liye. Isho lae भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार सुबह वाटिकन स्थित संत मार्था प्रार्थनालय में पवित्र मिस्सा उन लोगों के लिए अर्पित किया जो कोरोना वायरस की महामारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं और भय में जी रहे हैं। प्रभु उन्हें मदद करें। संत पापा फ्रांसिस ने आज के दोनों पाठों पर चिंतन किया, प्रथम पाठ सुसाना और दूसरा पाठ व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में है। संत पापा ने अपना प्रवचन आज के अंतर भजन से शुरू किया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। संत पापा ने कहा कि सुसाना और व्यभिचार में पकड़ी गई महिला दोनों ने अंधेरी घाटी में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। निर्दोष सुसाना पर झूठा आरोप लगाया गया था और दूसरी ने पाप किया था। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। संत पापा ने उपस्थित पुरुषों के दो समूहों की टिप्पणी की। दोनों समूहों का कलीसिया में विशेष स्थान था, एक न्यायाधीशों का समूह और दूसरा धर्म के आचार्य। सुसाना की निंदा करने वाले भ्रष्ट थे, व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की निंदा करने वाले पाखंडी थे। संत पापा ने कहा एक महिला पाखंडियों के हाथों पड़ गई और दूसरी भ्रष्टाचारियों के हाथों। दोनों महिलाएं अंधेरी घाटी में थी, मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। पहली महिला सुसाना स्पष्ट रूप से खुद को प्रभु को सौंपती है और प्रभु उन्हें बचा लेते हैं। दूसरी महिला जानती है कि वह दोषी है, वह सभी लोगों के सामने शर्मिंदा है। सुसमाचार यह नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से वह प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु उन्हें बचा लें। संत पापा ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभु का हस्तक्षेप प्राप्त है। ईश्वर सुसाना को सही ठहराता है और व्याभिचारी महिला को क्षमा करता है। भ्रष्ट न्यायाधीश खुद से अपने बनाए जाल में फंस जाते हैं और पाखंडी लोगों को खुद को बदलने हेतु मदद मिलती है। ईश्वर भ्रष्टाचारियों को क्षमा नहीं किया क्योंकि वे खुद के बारे में सुनिश्चित थे, इसलिए वे क्षमा मांगने में असमर्थ थे। उन्होंने खुद को ईश्वर के स्थान पर रखा और खुद को नष्ट कर दिया। ईश्वर ने महिलाओं की प्रार्थना सुनी, सुसाना को भ्रष्ट लोगों से मुक्त किया और दूसरी से कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। आज हम सभी को सबक सीखने की जरूरत है क्योंकि हम में से हर एक की अपनी कहानी है, हमारे अपने निजी पाप हैं। अगर हम अपने पापों को नहीं पहचानते हैं तो हम भ्रष्ट हैं और ईश्वर भ्रष्टाचारियों को क्षमा नहीं कर सकते। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने प्रभु से भरोसा रखने हेतु कृपा मांगने के लिए प्रेरित किया। और संत पापा फ्रांसिस अक्सर विभिन्न देशों के वर्तमान संघर्षों को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में वर्णित करते हैं। रविवार को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के तत्काल वैश्विक युद्ध विराम की अपील में शामिल हो गए क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। वाटिकन के प्रेरितिक भवन की लाइब्रेरी से रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के उपरांत संत पापा ने कहा कि वे उन सभी लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने तत्काल वैश्विक युद्ध विराम की मांग की है। संत पापा ने सभी प्रकार की शत्रुता को रोकने के लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कोविड-19 के खिलाफ एकजुट प्रयास राष्ट्रों और उन दलों के नेताओं में प्रतिद्वंद्विता को दूर करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। गत सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई के समर्थन में दुनिया भर के युद्धरत दलों से अपने हथियार डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, वायरस का प्रकोप युद्ध की मूर्खता दिखा रहा है। इसी वजह से आज मैं दुनिया के सभी कोने में तत्काल वैश्विक युद्ध विराम के लिए कह रहा हूं। कोविड-19 के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने और हमारे जीवन की सच्ची लड़ाई पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने का समय है। संयुक्त राष्ट्र की अपील का जवाब देते हुए कैमरून, फिलीपींस, यमन और सीरिया में कई सशस्त्र समूहों ने हाल के दिनों में हिंसा को कम करने के लिए पहला कदम उठाया है। हालांकि अफगानिस्तान, माली, लीबिया, सोमालिया, इराक और गाजा पट्टी सहित दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। मेक्सिको में मादक पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए मादक पदार्थों के तस्करों की लड़ाई और उत्तर कोरिया ने हाल ही में 2 संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। दुनिया भर के लगभग 70 देश वर्तमान में किसी प्रकार के संघर्ष में लगे हुए हैं। उनमें से अधिकांश अफ्रीका और एशिया में हैं। उनमें से कई भूले हुए युद्ध हैं, जैसे कुर्दिश तुर्की संघर्ष 1984 से चल रहा है और 1991 से सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा है। युद्ध विराम द्वारा कोविड-19 के प्रसार होने पर सबसे अधिक आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने में आसानी होगी। रविवार को अपनी अपील में संत पापा फ्रांसिस ने मानवीय सहायता मार्गों के निर्माण, कूटनीति के लिए खुलापन और उन लोगों की देखभाल को प्रोत्साहित किया जो खुद को गंभीर स्थितियों में पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पुष्टि की कि महिलाएं और बच्चे, विकलांग, हाशिए पर जीवन बिताने वाले विस्थापित और शरणार्थी संघर्ष के दौरान सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी से विनाशकारी नुकसान से पीड़ित होने का खतरा सबसे अधिक है। अंतोनियो गुटेरेस ने अपील की है कि इस बीमारी के युद्ध को समाप्त करें और उस बीमारी से लड़ें जो हमारी दुनिया को तबाह कर रही है। यह तभी संभव है जब हर जगह युद्ध विराम हो। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में लाखों लोगों पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। विशेष रूप से कई लोग जो वर्तमान में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्थापित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरिया में कोविड-19 के 5 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। अब तक इटली में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 97,700 हो गई है और मरने वालों की संख्या 10,780 हो गई, जबकि भारत में 1,071 लोग संक्रमित पाए गए और 29 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।